ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 32 श्लोक क्रमांक 31 तथा 32। इत्येतत् कथितं गुरुवे ज्ञानं तद् ब्रह्मदर्शनम् येनानु बुध्यते तत्त्वम् प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः। इत्येतत् कथितं गुरुवे ज्ञानं तद् ब्रह्मदर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वम् प्रकृतेः पुरुषस्य च। बत्तीसवां श्लोक हम पाठ करेंगे और उसका अनुवाद तात्पर्य पाठ करते हैं। ज्ञान योगस्य मन्निष्ठो नरिगण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इसी ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षतः भक्ति से हो अथवा दार्शनिक चिंतन से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वो गंतव्य परम लक्ष्य है भगवान। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है अनेक अनेक जीवन पर्यंत ज्ञान योग का शोध करने के बाद अंततः मनुष्य उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, अतः वह उनकी शरण में जाता है। जैसे ज्ञान योग की शोध करने वाले बिरले महापुरुष हैं, यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता तो समझा जाता है कि सारा श्रम व्यर्थ हुआ है। उससे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक वो भगवान की भक्ति को नहीं समझ लेता। भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर भगवत गीता में दिया हुआ है, जहां इसका उल्लेख हुआ है जो लोग चिंतन तथा योगाभ्यास जैसी अन्य विधियों का सहारा लेते हैं उन्हें कष्ट मिलता है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेक अनेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुंच सकता है, परंतु उसका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है। जबकि भक्ति का मार्ग सबके लिए सुगम है, मनुष्य को ज्ञान का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है, और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी सारी खोजें केवल खिलवाड़ होती है। पट्टू ज्ञानी का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य है, किंतु ब्रह्म तो परम पुरुष का तेज है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्य च, मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ और मैं परमानंद हूँ। भगवान समस्त आनंद के सागर हैं जिसमें ब्रह्मानंद सम्मिलित हैं। अतः जिसकी भगवान पर अविचल श्रद्धा भक्ति होती है वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हुआ होता है। इस अध्याय का नाम दिया गया कर्म बंधन। काफी लंबे समय से एक कापिलेय उपाख्यान, भगवान कपिल तथा माता देवहूति का प्रसंग आप लोग सुनते आ रहे हैं। प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। इसमें बहुत ही गूढ़ दार्शनिक बातों का वर्णन किया गया है। ऊपर श्लोक में देखिए जो लिखा हुआ है, इति तत् कथितम गुरुवि ज्ञानम तद् ब्रह्म दर्शनम। हे मां, हमने आपको ज्ञान योग के बारे में बतला दिया और भक्ति के बारे में भी बतला दिया। आप भक्त लोग यदि एकनिष्ठ होकर के यहां श्रवण किए होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन पिछले अध्यायों में कपिल मुनि ने दो बातों पर विशेष रूप से चर्चा की है। एक तो है प्रबल भक्ति, शुद्ध भक्ति, और दूसरा है योग, अष्टांग योग, अथवा उसको राजयोग कहते हैं। तो कपिल जी का कहना है, हे मां, ये दोनों में से चाहे आप कोई सा भी मार्ग अपनाओ, फल एक ही है, फल एक ही है। इति एतत् कथितम गुरुवि। गुरुवि शब्द का अर्थ होता है आदरणीय मां। देखो, कपिल मुनि यहां गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, पर फिर भी माता के प्रति इतना सम्मान, इतना आदर है, वो अपने को गुरु नहीं मान रहे हैं। वो माता को कह रहे हैं, माता से, हे गुरुवि, हे मेरी मां, आप सदैव मेरी पूज्या है। माता सदैव संतानों की पूज्या होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण में कहा गया, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमम तपः, पितरी प्रतिमापन्ने प्रियन्ति सर्वदेवताः। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सब कुछ है। यदि पिता की सेवा की जाती है तो सर्व देवता हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। पर परपक्ष में कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। यदि पिता की तुलना स्वर्ग से की जाती है तो माता की तुलना स्वर्ग से भी अधिक माना जाता है। तो यद्यपि ये भगवान है, सर्वोच्च है, असमूर्ध है, ना तो उनके बराबर का कोई है, तो उससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता, फिर भी मां को बड़ा आदर सम्मान देकर कहते हैं, इति एतत् कथितम गुरुवि। हे आदरणीय मां, तू सदैव मेरा गुरु ही रहेगी, आप मेरी पूज्या हो, आप मेरी आदरणीय हो। तो जो आपने प्रश्न किया था, बेटा पुरुष के बारे में बतलाइए, प्रकृति के बारे में बतलाइए, और संस्कृति के बारे में बतलाइए, भक्ति योग क्या है, किन किन लक्षणों से भक्ति की पहचान होती है, मैंने माता सब कुछ बतला दिया, अब ये निष्कर्ष की घड़ी है। अब अंतिम चर्चा पर कपिल भगवान पहुंच चुके हैं, इसलिए बोले इति एतत्। इति माने समाप्ति, मैंने बता दिया जो कुछ बताना था, मैंने बता दिया। एतत्, ये सारा बता दिया। क्या बताया, उसका मुख्य रहस्य क्या है, ज्ञानम यत् ब्रह्म दर्शनम। जिस ज्ञान से ब्रह्म का दर्शन होता है, उस ज्ञान का हमने बतला दिया। ज्ञानम यद् ब्रह्म दर्शनम। ब्रह्म दर्शन शब्द का अर्थ होता है दर्शयति, दृश्यते अनेन इति ज्ञानम। जिसकी सहारा लेने से, जिसकी सहायता से हमको ब्रह्म अथवा परमात्मा अथवा भगवान साफ साफ दर्शन देते हैं, उनका नाम है ज्ञान। ज्ञानम यद् ब्रह्म दर्शनम। उसे ज्ञान क्यों कहते हैं, ज्ञायते अनेन, इसके माध्यम से हम जानते हैं, इसलिए उसका नाम है ज्ञानम। और ब्रह्म दर्शन माने ब्रह्म का दर्शन जिस ज्ञान के माध्यम से होता है उस ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म दर्शनम ज्ञानम। ऐसे तो ज्ञान अनेक अनेक प्रकार के हैं, रसायन विद्या है, भूगोल विद्या है, खगोल विद्या है, ज्योतिष शास्त्र है, प्राणी विज्ञान है, जियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, पर पुरुष के बारे में ज्ञान ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान कपिल जी बता रहे हैं अथवा कोई ऐसे भगवान बताते हैं अथवा उनके भक्त ही बताते हैं ब्रह्म दर्शन। ये नानुबुद्ध्यते तत्वम, बोले उस ज्ञान क्या है, बोले उससे तत्व का दर्शन होता है, अनुबुद्ध्यते जान लेता है, क्या जानता है, तत्वम, तत्वम माने सत्यम। ये ब्रह्म क्या है, कभी कभी हम लोग साधन के बिना बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, हम भी सुनते हैं, यहां नए नए भक्त है और ये से ब्रह्म परमात्मा के ऊपर ऐसा ऐसी बोली बोला करते हैं जो सुनने में बड़ा आश्चर्य होता है। उचित रूप से समझ लेना चाहिए। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया, बुझी तेना पारे जे हो बलि ते के पारे, सेई बुझे बरने चैतन्य शक्ति देन जारे। एक भक्त कह रहे थे, बोले लेक्चर देना बड़ा आसान है। बिल्कुल आसान नहीं है मेरे प्रभु, पहले तो समझ नहीं पाएगा, नहीं समझेगा तो बोलेगा कैसे। बुझीते ना पारे से हो बलिते के पारे, समझ ही नहीं सकता, बोल कैसे सकता है। इसलिए गुरु की भूमिका निभाना अत्यंत अत्यंत कठिन है। सबसे पहले वो समझे, आचार्य उसको कहते हैं, जो शिष्य गुरु गृह में आता है उसका उपनयन संस्कार गुरु करता है, इसलिए उसको भी द्विज कहते हैं, इसको भी द्विज कहते हैं। पर जो गुरु अपने शिष्य को ज्ञान समझा देता है वो आचार्य कहलाता है। तस्मात आचार्यम इष्यते कथ्यते। कोरा लेक्चर देना अथवा नहीं समझना, इधर इधर उधर की वाणी को कहना, ये सरल है, पर आध्यात्मिक प्रवचन करना ये सरल नहीं है। यदि सरल होता उपनिषद में कभी ये नहीं कहा जाता आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्टा। जो वक्ता होता है वो आश्चर्य कोटि में होता है। मेरी बात सब सुन रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं केवल हमसे सुन करके मान मत लीजिए, इसको गंभीर रूप से मनन कीजिए। हाँ क्या कह रहे थे, हमने क्या विचार दिया था। आश्चर्य वक्ता यानी कि उपनिषद का, वेदांत का, इस आध्यात्मिक भाव का जो वक्ता होता है वो आश्चर्य होता है। आश्चर्य माने अलौकिक होता है। ऐसी समझ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब तक ज्ञान हृदय में नहीं आएगा प्रकाश कैसे करेगा। सूर्य में यदि रोशनी ना होती वो रोशनी कहां से देता। हम कुछ बहुत कुछ कहते हैं सेंटिमेंटल, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ इधर उधर की बोली बड़ी आसान है, पर आध्यात्मिक भावों को समझ करके समझाना कठिन है। जैसे कपिल मुनि यहां प्रवचन करते हैं, क्या ये सरल है। इति एतत् कथितम गुरुभिः ज्ञानम यद् ब्रह्म दर्शनम। दर्शन के दो पहलू हैं, एक तो है परोक्ष, एक है प्रत्यक्ष। तो परोक्ष में जैसे हम शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है। परोक्ष ज्ञान भी कठिन है। यदि परोक्ष ज्ञान सरल होता तो कक्षा में इतने लोग फेल क्यों हो जाते। आप देखिए नॉर्मल क्लासों में बच्चे लोग फेल हो जाते हैं, आप हमारे में देखिए 100 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग अध्ययन करना चाहते हैं, बहुत कम करना चाहते, करते भी तो समझ नहीं पाते, है कि नहीं। दिस इज वेरी कॉमन थिंग, हम कहना चाहते हैं बहुत सामान्य सामान्य बातें हैं। तो कपिल मुनि ये एक अद्वितीय वक्ता है, ये आध्यात्मिक बातों पर लेक्चर कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और कहते हैं मैंने कह दिया, समझा दिया। यही प्रवचन तो गीता में किया गया, श्री कृष्ण ने किया, गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। इसलिए वेदांत कहता है आश्चर्य वक्ता, वक्ता आश्चर्य है। तो क्या इस ज्ञान से जानोगे, पुरुष और प्रकृति का तत्व को जानोगे, ये ज्ञान है। पुरुष क्या है, सभी लोग हम जानते हैं कि दो पुरुष हैं, एक क्षेत्रज्ञ, एक जीवात्मा और एक परमात्मा है। और जीवात्मा जो होता है वो अधीनस्थ पुरुष होता है, और परमात्मा होता है संपूर्ण स्वतंत्र सत्ता, इसलिए उनको भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इनको भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो रहस्य समझने का अर्थ होता है अपने आप को उस परमेश्वर का दास समझना, है ना। यही तत्व है, सत्य क्या है, यही सत्य है। जैसे हम तिलक कंठी करके यहां बैठे हुए हैं, तो हमारा यदि हम परिचय देना चाहेंगे, सत्य परिचय क्या है, हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ वृंदावन के एक सदस्य है, ये परिचय हमारा ठीक है। बाकी झूठ मूठ का परिचय देव तो अलग बात है। तो क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ये जितने क्षेत्र हैं, जितनी भूमि हैं, उनमें मैं परम पुरुष हूं, और ये जीवात्मा मेरा अध्यस्तन पुरुष है, ये मेरा दास है, बस यही सत्य है। और प्रकृति क्या है, उनकी शक्तियां, श्री कृष्णेर स्वरूप तार शक्तित्रय ज्ञान, जार हय तार नाही कृष्ण ते अज्ञान। तो ज्ञान शब्द का अर्थ होता है कृष्ण को जानना एवं श्री कृष्ण की तीन शक्तियों को जानना, सच्चित आनंद अल्लादिनी संबित और संधिनी, एक ही बात है नहीं, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था, इन शक्तियों को जानना और श्री कृष्ण को जानना, श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानना, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी को 13वें अध्याय गीता में कहा गया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये अध्यात्म ज्ञान है। क्या इसकी चर्चा अत्यंत सरल है, बिल्कुल सरल नहीं। मां को समझा रहे, कितने लंबे समय से समझा रहे हैं, 9 अध्याय में एक बात से कहने से यदि व्यक्ति समझ जाता तो 9 अध्यायों का एक विस्तार दीर्घ प्रवचन है। तो दो प्रकार के हैं, एक ज्ञान मार्ग में से योग, तो 3 प्रकार के हैं, त्रिविधम योगः, कर्म योग और ज्ञान, ये नृणाम विधि से है। जो लोग अपना हित चाहते हैं उनको 3 मार्गों का अवलंबन करना होता है, एक कर्मयोग का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, और एक भक्ति का मार्ग है। तो ज्ञान योग के मार्ग का जो वर्णन है, ये कपिल मुनि ने संपूर्ण रूप से विशद रूप से टिट बिट एक 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 बातों का वर्णन उन्होंने कर दिया है, और उस वर्णन से यद ब्रह्म दर्शनम, वो ब्रह्म का दर्शन होगा, ब्रह्म को व्यक्ति जान सकता है। ब्रह्म क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया क्योंकि अद्वैत मार्ग का जो लक्ष्य है उसको ब्रह्म कहते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, ज्ञान योगश्च मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणम, हे मां मैंने भक्ति के लक्षण भी बतला दिए और ज्ञान योग के लक्षण भी बतला दिए, द्वयोरपि एको एवार्थो, ये दोनों एक ही है। भगवत शब्द लक्षण, भगवत शब्द लक्षण माने ये जो लक्ष्य है उनमें भगवत्ता सिद्ध होती है, ऐसा नहीं कि ज्ञानियों का जो लक्ष्य है उसमें भगवत्ता नहीं है, केवल हमारा जो लक्ष्य है उसमें भगवत्ता है, ऐसा तो नहीं है। सठ संपत्ति के अधिकारी श्री कृष्ण है, वो ज्ञानियों का लक्ष्य है, वो भी हमारा लक्ष्य है, अंतर थोड़ा बहुत है, इसीलिए हमारा मार्ग थोड़ा अलग है, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा अंतर कभी नहीं किया। हम लोग सेंटिमेंटली कहते हैं, भावना के आवेग में बहता हुआ हम कहते हैं अरे ये ज्ञानी है, ये योगी है। हो तो क्या फर्क पड़ा। एक माँ के कई संतान होते हैं, कई पुत्र होते हैं, हाँ कई, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है तो उस माँ की संतान है। श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं द्वयोर अपि एको एवार्थो, ये दोनों एक हैं, ये मेरा बड़ा लड़का है और ये मेरा छोटा लड़का है। मां की भूमिका में श्री हरि श्री कृष्ण कहते हैं ये भक्त मेरा छोटा है, छोटा बेटा, और ज्ञानी मेरा बड़ा है। तो क्या छोटा बेटा बड़े का निरादर करेगा? असली तत्व का दर्शन करने वालों में कभी झगड़ा नहीं होता है। जो तत्व से नीचे उतरते हैं उन्हीं में ही झगड़ा होता है। वो कहेगा वो लंबी टोपी डाल रखा है, हमारी गोल टोपी है, इसलिए वो संप्रदाय हमसे भिन्न है। भारत के संविधान पे लिखा हुआ है अयम निजो परोवेति गणानाम लघुचित साम, ये मेरा ये पराया ये तो छोटे मोटे बहुत हीन मति वालों का काम है। तरह तरह के वाद विवाद में पड़ते हैं। यहां श्रीहरि हमारे आराध्य प्रभु कहते हैं द्वयोरपि एप एवार्थ, ये एक ही है, एक खोजता हुआ जा रहा है और एक ऊपर का सीढ़ी का सहारा लेता हुआ जा रहा है। झगड़ा क्यों करे? ज्ञानी देख करके नाक क्यों सिकुड़े? अद्वैत पंथ कहने से ही जैसे रोंग जैसे शरीर में बिच्छू काटते हैं। अरे उस पंथ के तो जो आविष्कारक हैं वो आदि शंकराचार्य हैं, वो भगवान के अवतार ही तो हैं। उन्होंने जो मार्ग दिया है तो वो तो कहीं ना कहीं समझ करके दिया है। उस समय के लिए उसकी आवश्यकता थी। आवश्यकता क्या थी? आज भी आवश्यकता है। सभी लोग भक्ति मार्ग में आएंगे नहीं, सभी लोग ज्ञान मार्ग में जाएंगे नहीं, सभी लोग देवताओं की उपासना भी नहीं करेंगे। यही तो विचित्रता है। गोविंद तुआ सृष्टि विचित्र है। यदि सृष्टि में सब एक जैसा ही होता तो संसार फिर एक रस का होता, उसमें कोई आनंद नहीं आता। तो ज्ञान के पंथ को अवलंबन करने वालों को कहा जाता है अद्वैत पंथ वाले। क्या वो भी लक्ष्य रखते हैं हम भी ईश्वर को प्राप्त करेंगे? वो ईश्वर क्या है? उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म इति बदंती तत्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम, वही एक सत्य को, एक अर्थ को, एक परमात्मा को, एक ईश्वर को तीन लोगों तीन नाम से पुकारते हैं। नाम हो गया तो क्या हुआ? ये ब्रह्म इति ब्रह्म, ये ब्रह्म है। इति परमात्मा, ये परमात्मा है। इति भगवान, ये भगवान है। आपस में क्यों झगड़ा करें? और श्रीहरि कह रहे हैं कि ये भी मेरा पुत्र है, ये भी मेरा पुत्र है। हां ठीक है, इस मार्ग में थोड़ा क्लेश है, इस मार्ग में थोड़ा क्लेश है, कठिनाइयां इधर है, पर तेपी मामेव वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, सर्वभूत हित रहता है। इस श्लोक के टीका में कहा गया है कि अपकर्ष और उत्कर्ष, कोई समझ ले कि हम तो श्रेष्ठ हैं और वो निकृष्ट है, इस भावना को निरस्त करने के लिए, काटने के लिए श्रीहरि ने यह श्लोक कहा है। मां ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए, दोनों मेरे ही है, दोनों मेरे पास आएंगे, तुमने ही बनाया। काली नाग ने कहा श्री कृष्ण एक बात हम तुमसे पूछते हैं, आपने मेरे ऊपर कुपित हुआ है, ये बताओ ये तमगुण की उत्पत्ति किससे हुई है? मुझसे हुई है। तो तमगुण के अंतर्गत जो जीव जानवर है इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? मुझसे हुई है। ना हम लोग में जहर किसने भरा है? हमने भरा है। ना तुमने जहर भरा हमने काटा, तो दोष मेरा क्या? सारा संसार में जितनी सृष्टि है उन्हीं की तो सृष्टि है। हमको सम्मान देना चाहिए। इसीलिए कहा गया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बड़ी ऊंची सीढ़ी पर व्यक्ति ऐसा नहीं देखता। चलो ब्रह्म ज्योति में तो वो लोग जाएंगे, ऊपर ही तो जाएंगे, इधर तो रहेंगे नहीं। परमात्मा वाले वहीं तो जाएंगे। भक्त वाले ठीक है, हम लीला करते हैं, अच्छी बात है, हमारे पास धन है, हम रसगुल्ला खाते हैं, उसके पास धन नहीं, पकौड़ा खाते हैं, खाता है क्या है। इसलिए इस भेद को मिटा देना चाहिए। प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में सब लिखा है, बोले एक ही है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थित सम्यक उभयोर बिंदती फलम। बोले जो बालक होते हैं वो सांख्य योग को और भक्ति को अलग अलग समझते हैं, एक में छोड़ना है एक में जोड़ना है, बात एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सही तो कहा। हम सुन भी रहे हैं, कभी कभी हम लेक्चर भी सुनते हैं, हमें रोना भी आता है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इसको कोई सामान्य व्यक्ति ने तो नहीं कहा, इसको किसने कहा है? हाँ, आदि शंकराचार्य ने कहा है। क्या आदि शंकराचार्य के पास तुम लोग खड़े हो सकते हो? हम लोग में कोई ऐसा पहलवान हो जो वो उनके सामने खड़े होकर तर्क कर दें? किसी में आप अपने अंदर टटोल करके देखिएगा, पहले जाने से पहले तो साइड में खड़े हो जाओ, तर्क करने से पहले साइड में पहले खड़े हो जाओ, जो हम पूछते हैं फिर बताना, फिर मेरे साथ तर्क करना। शेयर बाजार में जब जाते हो कम से कम लाखों की रकम हो तब ना जाओगे, ऐसे नॉर्मल 10-5 रुपया लेकर कहां जाओगे? वो सिक्योरिटी रोक देगा, कहां जा रहे। यहां मिथ्या शब्द का अर्थ होता है ऐसा नहीं एकदम झूठ है, नहीं, आपेक जो पूर्ण सत्य है उनके सामने ये झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये चलता रहता है। कल जो सुख था आज वो सुख नहीं है, कल जो शरीर था आज वो शरीर नहीं है, इसलिए मिथ्या कहा गया है। इसी को वैष्णव दर्शन कहा, असत है। असत्य है, ठीक है, मान लिया वो मिथ्या कहा। यदि वो मिथ्या पर जाकर के फिर संसार में आते हैं और हम इसको असत मानते हैं, सत नहीं मानते हैं, श्री कृष्ण सत, हम भी क्यों इसमें रहना चाहते हैं? नहीं, इसीलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, परस्पर को आदर देना चाहिए। ठीक है, बड़े हैं वो अपने लाइन में है, हम भक्ति, हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, पक्का है, श्री कृष्ण ने कहा भक्ति मार्ग, ये तो बहुत अच्छा है। ये भेद को मिटाने वाला श्लोक है, गीता में भी वही बात कही गई है। और जो अच्छे भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं करते, प्रेम के द्वारा ज्ञान को पराजित करते हैं। यदि प्रेम के सागर में तरेंगे उठें, वो सुनामी की तरह स्थलभाग को डुबा देती है। वो भक्तों से आशा की जाती है, वो होना चाहिए। अद्वैत हो चाहे द्वैत हो, द्वैत में प्रेम है, वो प्रेम के धरातल पर सबको डुबाना चाहता है, सबको डुबाना चाहता है। यत पाद पंकज पलास बिलास भक्त्या कर्मा स्वयं ग्रथितम उद्गथयंती संतः तदबन्न रिक्त मतयो, तदबन्न रिक्त मतयो यतयो भी रुद्धा श्रुत गणास्तम अरणम भजवासुदेवम। कितना बढ़िया सुंदर श्लोक यह है। यत पाद पंकज पलास बिलास भक्त्या कर्मा स्वयं ग्रथितम उद्ग्रथयति संतः तद्बन्न रिक्त मतयो यतयो पिरुद्धा श्रुत गणास्तम अरणम भजवासुदेवम। यहां भक्ति की संस्तुति की जाती है। बोले बड़े बड़े मुनि ऋषि ज्ञान मार्ग लोग वो अपने इंद्रियों को रोकना चाहते हैं। यहां पर इंद्रियों को स्रोत गणा कहा गया। स्रोत माने जैसे प्रवाह माना नदी है, गंगा जी है, यमुना है, हाँ ये अनवरत प्रवाहित है, तो इनको रोकना चाहा, कोई भी चाहेगा वो रोक नहीं पाता। यतयोपि, यत्न करने पर भी वो स्रोत रुकते नहीं है, वो धारा चलती रहती है। परंतु जो श्रीहरि की शरण ले लेता है वो उस स्रोत को रोकने में समर्थ होता है। बहुत छोटा उदाहरण देखे, उल्टा जले मछली चले बह जाए गजराज। बोले जल का जो प्रवाह है उस प्रवाह के उल्टी दिशा में मछली चलती है पर गजराज बह जाता है। क्यों? जो जाको शरण लिए वो राखे तके लाज। बोले मछली ने जल की शरण ले रखी है इसलिए जल ने उसको शरण दी और वो जल में ही चलती है। वो मछली वो ऊपर चलती है पर जल की शरण में वो गजराज नहीं है, वो जल के प्रभाव से गजराज बह जाता है। तो ज्ञानी कितना भी प्रयास करता है वो बह जाता है। तत्वत न रिक्त मत, उसकी मति नहीं है, उसकी भावना नहीं है, रिक्त है, कोरी मति है उसकी। पर भक्त लोगों की मति क्या है? भरी हुई है, पूर्ण है। यत्पाद पंकज पलास बिलास, बिलास माने बिहार। भक्त कहां पे बिहार करता है? भक्त श्री कृष्ण भक्ति रूपी गंगा में बिहार करता है, बिलास है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे भक्त लोग को श्री कृष्ण के चरणों में बिहार करते हैं। यत्पाद पंकज पलास बिलास, कैसे बिहार करते हैं? तुलसी में चंदन लगा करके उनके चरणों में देते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तो सेवा करते हैं। ये बिलास है, ये बिहार है, ये आनंद है। यत्पाद पंकज पलास बिलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयंती संत। और वो कर्माशय मैंने अहंकार को उखाड़ के फेंक देते हैं। किसी ने प्रभुपाद जी से प्रश्न कर दिया, अच्छा नदी के वेग को रोकना तो मुश्किल है, तरंगों को रोकना भी मुश्किल है, परंतु यहां स्रोत गणा को रुद्धा कहा गया है, भक्त लोग कैसे कर देते हैं? परम विद्वान श्रील प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा जब नदी सागर में मिलती है उस सागर में कभी कभी बड़ी बड़ी तरंगे और भारी उत्ताल तरंग आती है कि नहीं? उसको टाइड कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टाइड, तरंगे, जुआर उसको बोलते हैं। बोले नदी तो बहती हुई चलती है पर जब सागर में भयंकर तरंग उठती है फिर नदी की तरंगे काम नहीं करती, नदी की धारा रुक जाती है। रुकती कि नहीं रुकती? देखा नहीं सागर, नदी का संगम देखा नहीं? आप किसी सागर के पास जाइएगा, जब वहां सागर में तरंग बड़ी जुआर उठेगी ना तो नदी का पानी बैक मारता है, वो पीछे चलता है, वो स्रोत वहां काम नहीं करता। देखा कि नहीं देखा? ये कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा, इसलिए भागवत समझना कठिन है। यत्पाद पंकज पलास बिलास भक्त्या कर्माशयम् ग्रथितम उद्ग्रथ यति संतः। बोले ये जो कर्माशय है, ये जो कर्म की धारा है, ये बहती चली है, इसको केवल सागर की तरंग ही रोक सकती है। बोले वो सागर की तरंगे जब बड़ी मात्रा में बड़ी जोर की उठेगी ये नदी की धारा बंद हो जाएगी। इसी प्रकार जब चित्त सागर में भक्ति की सेवा की तरंगे उठेगी तो ये कर्माशय कट जाएगा। इसीलिए बार बार कहा गया सेवा रूपी तरंगों को जगाओ, इतनी तरंगे उठे ताकि सांसारिक कामना ही ना हो। इस श्लोक का आशय यही है। रिक्त मत, और उनके चित्त में कोई भक्ति है नहीं, उनकी भक्ति कोई तरंग ही नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक के आधार पर किया, भक्ति रसामृत सिंधु, और वो सिंधु कहां समाता है, चित्त में ही समाता है। इतनी सेवा करने वाले, इतनी सेवा होनी चाहिए, सेवा के चिंतन होना चाहिए, तो रात की नींद हराम हो जाए। सुखिया सारा संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा है जागे और रोवे। ये सेवा नहीं हो पाई, ये सेवा नहीं हो पाई, जो सेवा नहीं करता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो महामूर्ख है। अरे तुम बेग को कैसे रोकोगे, नदी की धारा को कैसे रोकोगे, रोकने में समर्थ केवल सागर है। इसीलिए उसको पति माना जाता है। नदी का पति कौन है, सागर है। पति पत्नी को नियंत्रण कर सकता है, ये भाव है, ये प्रेम की धारा, प्रेम की तरंग है, ये इंद्रियों को रोक सकती है। इसलिए हमारे में इतना प्रेम होना चाहिए, ये ज्ञान को डुबा दें, ये रिक्त जो है उसको भक्ति जल में अप्लावित कर दें। होता है ऐसा ही। भागवत में चैतन्य चरितामृत में दो दृष्टांत है, अनेक दृष्टांत तो हो भी सकते हैं। उद्धव जी महाज्ञानी है, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। इतने बड़े विद्वान थे, उनको श्री कृष्ण ने भेजा, उनमें निर्विशेष ज्ञान था। क्या निर्विशेष ज्ञान था, श्री कृष्ण ने उनको दुत्कारा, नहीं, श्री कृष्ण से दैत सखा मित्र थे, वो उनको भेजा। भावग्राही ने उनके हस्त पकड़कर, कर गृह हाथ ले पकड़कर उनको भेजा, गच्छो धव ब्रजम सौम्य, आप जाओ ब्रज में चले जाओ। ब्रज में जाकर जब देखा नंद बाबा रो रहे हैं, मां यशोदा रो रही है, गोपियां, जितनी गोपियां थी सबके आंखों में भादों और सावन की धारा छूट रही थी। परम ज्ञानी उद्धव जाकर उन्हें ज्ञान समझाते हैं। नंद बाबा के विरह को अपनोदन करने हेतु वो निर्विशेष ज्ञान को समझाते हैं, निर्विशेष ज्ञान। दृष्टम श्रुतम भव्य भवत भविष्यत स्थास्नुम चरिष्णु महदल पकम च। हे बाबा, इस संसार में जो भी है, दृष्टम श्रुतम, जो तुम देख रहे हो, जो सुन रहे हो, भूत भवत भविष्यत च, जो पहले बीत चुका है, जो अभी हो रहा है, जो आगे होने वाला है, स्थास्नु चरिष्णु स्थिर जंगम जड़ जंगम महद अल्पकम च छोटा बड़ा, ये सब कुछ नहीं है, ये क्या है। बोले सर्वत्र केवल उन्हीं का विस्तार है। न च वस्तु वाच्य तराम च, बोले बिना च्युतात वस्तु चर तराम न वाच्यम सैव सर्वम परमार्थ भूत। बोले श्री कृष्ण के बिना ये वस्तु कहलाने योग्य भी नहीं है। बिना च्युतात, अच्युत के बिना, वस्तु तराम नवाच्यम, ये वस्तु तरा, ये वस्तु कहलाने योग्य नहीं है। ये पुष्प तब तक पुष्प नहीं कहलाएंगे जब इसमें श्री कृष्ण नहीं होंगे। इसलिए सर्वत्र श्री कृष्ण है। मया ततम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया। नंद बाबा इसको सुन रहे थे, चुपचाप रहे, और उद्धव जी रात्रि को वहां रात्रि जापन करने लगे। और प्रातःकालीन समय जब उन्होंने देखा गोपियों के माहौल में, गोपियां क्या कर रही थी, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम। आहा, गोपियां प्रातःकाल जगकर अरविंद लोचन का नाम कीर्तन कर रही थी, और क्या कर रही थी, साथ साथ दधि मंथन कर रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये दधि मंथन का शब्द और जो गोपियां गा रही थी उद्गायती नाम अरविंद लोचनम व्रजांगना नाम दिविस प्रसद ध्वनि इतने तेज गा रही थी और वो सारा संसार में वो आवाज फैल रही थी पूरे विश्व में। देखिए एक प्रेमी भक्त एक ज्ञानी भक्त को परास्त करता है। ये प्रेमी जो ब्रजांगनाएं हैं ये उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करती है। उद्गायती नाम और अरविंद लोचनम ब्रजांगना नाम दिविस प्रसद ध्वनि दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते येन दिशा मंगलम। बोले गोपियों का जो दधि मंथन है वो शब्द और गोपियों के मुखारविंद से जब अरविंद लोचन का गुण कीर्तन होता है इन शब्दों से सारा संसार का अमंगल दूर हो जाता है। ये गोपियों की कितनी प्रशंसा है। हमारी आचार्य हैं गोपियां कितना वैराग्य है। विवाहिता थी पत्नी पुत्र को छोड़कर वो कृष्ण के पीछे भाग रही थी। और कहने को तो लज्जा है यहां आकर के 50 साल में दो दो पांच पांच बच्चों को रख करके हम शादी करना चाहते हैं। क्या ये यही हमारा आदर्श है? इसमें तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और वो उद्धव जब गोपियों के भाव से प्रभावित होते हैं वो कहते हैं आहा आप मुझ पर कृपा करो आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधी नाम। हे प्रभु मुझ पर इतनी कृपा करो ताकि ब्रज की जो लता पता मुझे बना दो गोपियों की धूल मुझ मेरे सर पर गिरे। वो ज्ञानी भक्त महान प्रेमी भक्त में रूपांतरित हुआ। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा जब प्रेम की बड़े बड़े तरंगे उठती है ये ज्ञान की छोटी छोटी बातें क्या है डूब जाती हैं। भेद मिटा वो उद्धव और ज्ञानी नहीं रहे वो प्रेमी बन गए। प्रेमी भक्त के संगत से ऐसा कहा गया है ज्ञानी भक्त धीरे धीरे प्रेमी हो जाता है। श्री चैतन्य संप्रदाय में भी एक ऐसे भक्त थे वो भी ज्ञानी थे उनका नाम था श्री ब्रह्मानंद भारती जी। सदैव अद्वैत पंथ के थे वो निराकार अद्वैत संप्रदाय से उन्होंने संन्यास दीक्षा ले रखी थी इसलिए नाम पड़ा था ब्रह्मानंद भारती जी। और चैतन्य महाप्रभु उन्हें गुरु के रूप में सम्मान दिया करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से आए तो यहां के प्रेमी भक्त उन्हें मिलने गए तो ब्रह्मानंद भारती भी गए थे पर उनकी अंग में मृगछल था चर्मांबर। अद्वैत पंथ के लोग जंगल में रहते हैं कभी पहाड़ की गुफा में रहते हैं वन अरण्य पर्वत सागर गिरी भारती पूरी सरस्वती ये सब सन्यासियों की टाइटल होती है उपाधियां होती है उन उपाधियों में भारतीय टाइटल युक्त थे ब्रह्मानंद भारती आ रहे थे तो मुकुंद दत्त ने कहा भगवान ब्रह्मानंद भारती जी आ रहे हैं उनको मैं स्वागत करके ले आऊं। महाप्रभु ने कहा नहीं वो मेरे गुरु हैं मैं स्वयं जाऊंगा उनका स्वागत करने के लिए। तो महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर स्वागत करने हेतु जाते हैं बड़दंड पे। ब्रह्मानंद भारती जी उधर से आ रहे थे और अंग में चर्मांबर है मृग चर्म है मृग मृगछाल। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब मृगछाल को देखा तो देख करके भी अनदेखी कर दी और मुकुंद दत्त ने कहा भगवान महाप्रभु ये ब्रह्मानंद भारती जी है। हाँ महाप्रभु ने उन्हें डांट लगा दी ये हो भारती न है तुम ही अज्ञान ब्रह्मानंद भारती कहने पारिवन चम अरे तुम अज्ञानी हो तुम क्यों इनको ब्रह्मानंद भारती कहते हो ब्रह्मानंद भारती क्यों चमड़ा पहनेंगे भारती गोसाई केने पारिवन चम ऐसा करके जा रहे थे। ब्रह्मानंद भारती जी को पता चल गया कि मेरा ये चर्मांबर उनको पसंद नहीं है। हाँ महाप्रभु ने उनको फिर उन्होंने निश्चय कर लिया ठीक है हाँ हम चर्म धारण नहीं करेंगे। जैसे ही उनके चित्त में भाव आया, उन्होंने सोचा कि चर्मांबर धारण करके इसे अद्वैत पंथ में इसे ज्ञान का अहम लेकर के कोई संसार का पार नहीं जा सकता, डूब जाएगी, बिल मझधार में उनकी नैया डूबेगी। तो जैसे ही अंतर्यामी प्रभु ब्रह्मानंद भारती जी के अंतर को समझ लेते हैं, इशारा करते तो बहिर्वास आता है। तो बहिर्वास जब ब्रह्मानंद भारती जी ग्रहण करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने लंबी दंडवत की। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, तुम आचार्य हो, तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए। जब तुम प्रणाम करते हो तो हमें असह्य होता है, हम सहन नहीं कर पाते। हाँ, परंतु एक विलक्षण बात तो हो रही है चैतन्य, क्या है? आजन्म करी नो मोई निराकार ध्यान, तुमा देखी चित्ते हय श्री कृष्ण स्फुरण। बोले जीवन भर मैंने निराकार का ध्यान किया है, पर ज्यों मैंने आपको देखा मेरे चित्त में श्री कृष्ण का स्फुरण हो रहा है। बार 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 कहते हैं श्री कृष्ण स्फुरण हो रहा है। जिह्वा बोले कृष्ण नाम मन मन नेत्र कृष्ण तुमा के तद्रूपे देखे हृदय सतृष्ण। जिह्वा, मेरी जिह्वा कृष्ण में उच्चारण कर रही है और मेरा मन मेरे नेत्र सब कृष्ण को ही देख रहे हैं, और मैं जब तुमको देखता हूं ना तो मेरा चित्त ललचता है, तुम ही कृष्ण हो। प्रभु ने कहा, प्रभु कहे कृष्ण तुमार गाढ़ प्रेमा है, जहां तहां देख तहां श्री कृष्ण स्फुर। महाप्रभु ने कहा, आपके चित्त में श्री कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम है, इसीलिए जहां भी आप देखते हो वहां श्री कृष्ण का स्फुरण होता है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा उचित नहीं है, ये कहना ठीक नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती कहते, नहीं, तुम साक्षात श्री कृष्ण ईश्वर हो, हमने जान लिया है। निराकार का ध्यान करने वाला चित्त तुम्हारे प्रति आकर्षित क्यों हो रहा है? सांप्रतिक दुई ब्रह्म है चलना चल। वर्तमान दो ब्रह्म है इस नीलाचलपुरी में, क्या है? आप गौर ब्रह्म, आप गौरंग महाप्रभु, आप भी ब्रह्म हो, और वो जगन्नाथ वो अचल, वो भी ब्रह्म है। ये अद्वैत सिद्धांत को स्थापित करना चाहते। चैतन्य महाप्रभु ने उनके बात को काट दिया, बोले नहीं, ऐसा नहीं है। बोले ये सब सांप्रतिक इस नीलाचल में दो ब्रह्म प्रकट हुए, क्या है? बोले जगन्नाथ श्याम वर्ण ये अचल ब्रह्म है और ब्रह्मानंद भारती सचल ब्रह्म है। ये भी गोरे थे, वो भी गोरे थे, तो उन्होंने इनको दिखाया, उनको उनको दिखाया, दोनों में झगड़ा हो गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो वहीं थे, वो न्याय दर्शन के थे। न्याय दर्शन का जो अध्ययन कर लेता है उनको भट्टाचार्य उपाधि मिलती है। तो ब्रह्मानंद भारती ने कहा, भट्टाचार्य हमारा विचार करो, तुम विचार करो। क्या विचार करो? बोले व्याप्य और व्यापक न्याय। क्या? ईश्वर का व्यापकता है, तब तो उन्होंने मेरे अंतर को जान लिया, मेरा चर्मांबर को हटा करके मुझे कपड़े पहना दिए और मैं उनके अंतर को नहीं जान सका, इसीलिए वो व्यापक है और मैं व्याप्य हूं, मैं जीव हूं और वो ईश्वर है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत अच्छा कहा, तुमने, तुम्हारी जीत है, तुम्हारी जीत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है सार्वभौम, तुम्हारा विचार क्या है? बोले गुरु शिष्य के अन्याय से गुरु की जीत होती है, शिष्य की हार होती है। बोले ये मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूं, माने उनसे छोटे हूं, इसलिए इनका तर्क के सामने मेरा तर्क छोटा है, इसलिए मेरी हार ही है। ब्रह्मांड भारत का ये नहीं हो सकता, ये तुम कहते हो सही है, हमारी जीत है, पर तुमने जो अर्थ किया ये अर्थ गलत है। क्या गलत है? बोले तुम भक्त वत्सल हो, भक्त के समय पे हार मानना ये तुम्हारी विशेषता है। इसीलिए तुम भक्त वत्सल होकर मेरे सामने हारते हो, यही तुम्हारी भगवत्ता है। इसीलिए तुम्हारी हार हुई, ये मेरी जीत हुई, तुम कृष्ण। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा क्या सुंदर तर्क वितर्क चल रहा है। तो सार्वभौम प्रभु ने कहा, आपने अच्छा कहा, यदि साक्षात कृष्ण सामने दर्शन भी देंगे और समझा भी देंगे तो जीत तो होना ही है। इस प्रकार से ब्रह्मानंद भारती का जो अद्वैत भाव था वो कहता है, अद्वैत विथि पथिके रूपास्य स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन के नापी वयम हठेन दासिकृता गोप बधू बेटेन। अद्वैत पंथ के हम थे, बड़े बड़े शिष्य हमारी सेवा करते थे, बिल्व मंगल के वचन को कह रहे हैं, परंतु पता नहीं किसी सठ ने किसी चोर ने मेरे चित्त को चुरा लिया है, आकर्षित कर लिया है, तभी तो मेरा ये हाल हुआ। कृष्ण नाम स्फूरे मुखे मन नेत्रे कृष्ण तुमा के तद्रूपे देखी हृदय सतृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रेम बनिया से वो ब्रह्मानंद भारती बदल गए। इसलिए इसी श्लोक का उद्देश्य यही है, हम अपने प्रेम को बनाए रखना चाहिए, भक्ति मार्ग में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए, साथ साथ सभी को आदर देना चाहिए, हो सके तो अपने प्रेम रूपी सागर में उनको डुबा देना चाहिए, तभी तो भक्ति सार्थक होगी। आपस में झगड़ा करना, ये छोटा ये बड़ा, ये ज्ञानी ये योगी ये ध्यानी ये देवता का उपासक, इसमें ये भाव जब तक हम रखेंगे तब तक भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये निष्कर्ष श्री कपिल मुनि कहते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।